का सिर टूट गया और जो खराब खून जमा था वो बह गया और दिखने लगा। हाँ, ये घटना। इसमें तो आचार्य ने उदाहरण बनाया, मैंने बचपन में सन्मत संदेश में एक घटना पढ़ी थी, नाम भी याद है मुझे, बाबा लालमंद दास जी नाम याद है, और मेरठ वालों ने मुझे बताई क्या इस मंदिर की वो घटना है। ऐसा
वर्णे जी के साथ घटी थी, उन्होंने मेरी जीवन का
वर्णे जी के साथ भी घटी थी।
उनका खुदा ने वो कोई बच्चे खेल रहे थे ना,
हाँ,
उन्होंने उठा के मारा और किसी आंख में लगा,
हाँ,
छिप गए वो।
अच्छा,
क्या होगा? और वो आंख खुल गई उसके बीच में।
हाँ, तो वर्णे जी वो मतलब पिटने वालों से नहीं थे, तो उसे मारने वालों
नहीं, माने नेचुरली जो हुआ।
अब दिक्कत की बात ये है कि आचार्य देव ने इसको अनुष्ठान का उदाहरण बनाया, क्रिया का उदाहरण बनाया, मतलब इसमें कोई उन्हें सोच समझ के, पता तो था नहीं कि मेरे अंदर को खून जम गया है,
ज्ञान बिना की क्रिया है।
हाँ, ज्ञान बिना की क्रिया, और क्रिया से उनकी वो दृष्टि, उनको आंख सही हो गई। तो ऐसा यहाँ कैसे लागू होगा?
हाँ,
ये सोचने की बात है। देखिए, यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की, एक तो कहिए तो क्रिया की बात हुई, क्रिया का उदाहरण। अभी ज्ञान ने का क्या उदाहरण है? वो चतुर व्यापारी का, एक व्यापारी, एक किसान था, उसको कहीं से चिंतामणि रत्न जैसी बहुमूल्य चीज मिल गई। अब वो जानता नहीं था, उसके पास ज्ञान नहीं था, समझ में आया? तो और इधर तो इधर भी ज्ञान नहीं था और इधर भी ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यापारी जानता था कि ये रत्न बहुमूल्य है। तो वो गया तो सही थी, किसान लोग तो वैसे ही बहुत दयनीय हालत में होते हैं, तो ये पत्थर खरीद लो आप। तो कितने में लेगा? उसने कहा दो मुट्ठी चने में। तो सेठ जी इतने चतुर थे, अगर मैं ऐसे ही दे दूंगा तो इसको शक हो जाएगा, ये कुछ रेट बढ़ा देगा। दो मुट्ठी? अब दो मुट्ठी नहीं तो एक ही मुट्ठी दे दो। उसको तो भूख लगी थी, ख्याल में आया ना, एक मुट्ठी चना दे करके चिंतामणि रत्न खरीद लिया। तो ये बेईमानी है कि ज्ञान न है? उदाहरण से मतलब है, तो उन्हें समझ थी कि ये कितनी बहुमूल्य चीज है, तो उन्हें मिल गई, और जिसे जिसके पास थी उसे प्राप्त नहीं थी तो उसके हाथ से चली गई। इस तरह ये उदाहरण उन्होंने बनाए। अब देखिए, यहाँ क्रिया से आशय जड़ की क्रिया से नहीं है। पहला तो ये सब नए प्रज्ञापन में से निकाल निकाल के रखेंगे। यहाँ साधक दशा में होने वाले शुभ भाव को क्रिया कहा गया है।
बिना सम्यक्ति?
हाँ,
बिना सम्यक्ति के।
देखो, बिना सम्यक्ति के अपन क्यों लगाते? अगर मोक्ष मार्ग है तो जब, क्योंकि दोनों ने साथ में रहते, ज्ञान ने और क्रिया ने दोनों साथ में रहते, ख्याल में आए ना, तो ज्ञानी का ही शुभ भाव लेना चाहिए क्योंकि उसी पे उपचार आएगा। तो और अगर आप बिना सम्यक के लोगे तो उसको अनुष्ठान से साध की सिद्धि हो कहाँ रही?
बाद में ज्ञान हुआ उसको, मतलब पहले बाद में ज्ञान हुआ
तो बाद के शुभ भाव को क्रिया कहा जाएगा, ये तो अंधक्रिया है, ख्याल में आए ना। फिर यहाँ साधक दशा में होने वाले, गुरुदेव ने लिखा थे, साधक दशा में होने वाले शुभ भाव को क्रिया कहा गया है क्योंकि वे प्रायः व्रतशील संयम आदि बाह्य क्रिया में निमित्त होते। कौन? शुभ भाव। बाह्य क्रिया में निमित्त कौन होता है? शुभ भाव। तो आत्मा की जो शुभ भाव, आत्मा की परिणति है ना, इसलिए उसको क्रिया में लिया, और बाह्य क्रिया में निमित्त है तो उसका ही कारण बन गया क्रिया में लेने। इसी प्रकार ज्ञान से आशय रत्न त्रय रूप शुद्ध परिणति से है, मात्र पहल लक्षी क्षयोपम ज्ञान से नहीं। आज समाज में जो कंफ्यूजन, विशेषकर विद्वानों के बारे में लोगों की अनास्थाएं बढ़ती हैं, लोग सब संदेह करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि ज्ञान तो बहुत है और आचरण कुछ नहीं, तो उनकी मूल में भूल क्या है? वे शास्त्र ज्ञान को ज्ञान मानते और जड़ की क्रिया को आचरण समझते, चारित्र समझते। तो ज्ञान के साथ में चारित्र भी होना चाहिए। तो हमें जो शास्त्र ज्ञान है वो हमारा ज्ञान हो गया, और जो बाह्य आचरण है वो चारित्र हो गया। तो ये जगत शास्त्र ज्ञान वालों से बाह्य आचरण की अपेक्षा रखता है। अगर लोग ये मानते हैं कि वो ज्ञान है और ये चारित्र है, तो मान्यता गलत है। अपेक्षा रखना उतना बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो उपदेश देता है, वो लोगों के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है, तो लोग उसका आचरण भी उस लेवल का तो देखना ही चाहते हैं। तो अगर लोग अपेक्षा रखते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, वो तो एक सामाजिक व्यवस्था और सिस्टम की बात है। तो वक्ताओं को भी विद्वानों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को ख्याल में आए। ये यहाँ सिद्धांत की बात चल रही है, ये सयोत्तम ज्ञान ये ज्ञान है ही नहीं, और शास्त्र ज्ञान का और बाह्य चारित्र का कोई अविनाभावित्व नहीं है। आत्मज्ञान का और भूमिका अनुसार बाह्य क्रिया का अविनाभावित्व है। नियम तो आत्मज्ञान और स्वभाव और क्रियाओं के साथ है, लेकिन यहाँ तो अकेले सयोत्तम ज्ञान की बात है। इसलिए ज्ञान ने मतलब सयोत्तम ज्ञान नहीं, ज्ञान ने मतलब भेद विज्ञान। और यही बात वहां बहत्तर गाथा की टीका में है, जहाँ ज्ञान बहत्तर में है ना, ज्ञान ने और क्रिया ने का एकांत का खंडन किया है। अब देखो, किसी को शुद्ध भाव से मोक्ष होता है और किसी को रत्नत्रय रूप शुद्ध भाव से, किसी को ज्ञान से होता है, किसी को क्रिया से होता है, ऐसा नहीं। साधक को निश्चय रत्न त्रय के साथ यथा योग्य स्वभाव होते ही है, अतः क्रिया ने से अनुष्ठान की प्रधानता से कथन किया गया। चरणान योग के ग्रंथों में रत्न त्रय के साथ में जो शुभ परिणति और बाह्य क्रियाएं होती हैं, उसकी मुख्यता से कथन किया जाता है। अरे उसे मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है। बारह तप है ख्याल में आए, व्रत है, तप है, संयम है, इन सब क्रियाओं को चरणान योग की शैली में मोक्ष मार्ग कहते हैं। उससे अपने को घबराना नहीं चाहिए, और अगर कोई कहे तो उसे मिथ्या दृष्टि नहीं मान लेना चाहिए। मिथ्या दृष्टि तो विपरीत अभिप्राय से होता है, कहने से थोड़ी होता है। अतः क्रिया ने से अनुष्ठान की प्रधानता से कथन होता है। इस संबंध में नए प्रज्ञापन गुजराती पेज 275, उसका एक कमेंट से देखो गुरुदेव का। यहाँ प्रधानता शब्द का प्रयोग किया गया है, मूल में अनुष्ठान की प्रधानता वाला ऐसा लिखा है, हाँ, जो ये बताता है कि गौण रूप से दूसरा कारण भी विद्यमान है, और ये मुख्य गौण मोक्ष मार्ग में नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, दो है ही नहीं, तो वहां मुख्य गौण का सवाल ही नहीं। ये तो मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। तो जब आप अंतरंग भावों की अपेक्षा और निश्चय मोक्ष मार्ग की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो ज्ञान ने की प्रधानता से कथन होगा, और जब उसके साथ में होने वाले व्यवहार का ज्ञान करेंगे, जो अभी बारहवीं गाथा में आया, जाने लो प्रयोजनवान छे, तो क्रिया ने की प्रधानता से कथन होगा। तो मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, तो निरूपण में मुख्य गौण होगा, और वक्ता के तत्कालीन अभिप्राय में क्या बोला,
तत्कालीन वाले
वैसे तो उसकी दृष्टि में मोक्ष मार्ग जो है वही मुख्य रहेगा, लेकिन प्रयोजन बस श्रोताओं को ज्ञान कराने के लिए पटोड़ जी ने एक बहुत अच्छा तर्क दिया है कि व्रतशील संयम को क्या बोलते हैं, परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा मोक्ष मार्ग कहा गया है।
बहुत अच्छा।
तो निमित्त मिटने से मोक्ष मार्ग हो जाता है, परद्रव्य खत्म हो जाता, क्या हो जाता है उसमें। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कई प्रकरण ऐसे हैं जिसमें बहुत आपस में गहन चिंतन मनन की आवश्यकता है। जैसे अभी हमने मंगलायतन में ये प्रयोग किया था, पवन जी भी थे, दादा भी आए थे दो दिन के लिए, हम भी क्रम पर्याय का शिविर लेने के लिए गए थे। तो ये द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है, इस बात की चर्चा हुई थी, कभी मौका आएगा तो चर्चा करेंगे। तो एक चीज प्रधान है कथन में, तो दूसरी चीज गौण हो गई, ख्याल में आए ना। और अगर महाव्रतों से मुक्ति हुई, या देखो ऐसा पुराणों की शैली में ऐसे ही आता है कि उन्होंने वैराग्य हो गया तो महाव्रत अंगीकार किए और तप अंगीकार किया और मुक्ति को प्राप्त किया, एक क्रिया ने का कथन घर में आए। वहां बिना रत्नत्रय के क्रिया से हो गया ऐसा भी नहीं है, और बिना क्रिया के रत्नत्रय होता ही नहीं क्या, हाँ ये रत्नत्रय होगा तो तदनुकूल बाह्य क्रिया भले अंतर मुहूर्त के लिए सही, तो भरत चक्रवर्ती को अपन एक्सेप्शन में लेते हैं कि उनका अंतर मरुदकारी मुनि अवस्था का काल था, यानी उन्होंने वो पुरुषार्थ शुक्ल ध्यान का अंतर मुहूर्त में प्रकट कर लिया जिसे आदिनाथ 1000 वर्ष बाद कर पाए, मुनि होने के 1000 वर्ष बाद। लोग ये भी एक प्रश्न होता है, जल्दी किसको हुआ मोक्ष? भरत को फटाफट हो गया, अंतर मुहूर्त में ही हो गया। आदिनाथ को 1000 वर्ष लग गया। देखो भाई, आदिनाथ का जो 1000 वर्ष का काल था वो ध्यान का काल नहीं था, वो छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाला काल था। और जो मोक्ष मार्ग की जो समझ लो सुपर फास्ट स्पीड है, जो दुरंतो ट्रेन जैसी की सीधी मंजिल पे जाके रुके, आ जानते दुरंतो चलती मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई से नागपुर, दिल्ली से हावड़ा, वो बीच में कहीं नहीं रुकना नॉन स्टॉप, वो आठवें गुण स्थान से छपक श्रेणी से छूटती। तो आप देखो छपक श्रेणी का काल सबका एक श्रेणी का लगभग अंतर मुहूर्त, बाकी 10-20 संख्या समय कम ज्यादा हो तो अपने को उतनी पकड़ नहीं है, अंतर मुहूर्त है। तो वो काम उनका हरेक का उतने ही समय में होता है, लेकिन भरत चक्रवर्ती को 28 मूल गुण उनकी क्रिया में व्यक्त रूप से दिखे वैसा प्रसंग नहीं बना, ख्याल में आए? लेकिन जो मूल मूल गुण है, एक बार हमारे राकेश जी ने अष्ट पावर में से मुझे बताया कि चार है मूल, वो नग्नता, केश लुंच, एक मार आर, खड़े खड़े आर, द्रवलिंग के चार मुख्य बातें, बाकी तो और है ही, वो तो थे ही ना आखिर, अब उन्हें आर ही नहीं किया तो खड़े खड़े का मतलब ही नहीं। लेकिन निर्ग्रंथता और केश लुंच इत्यादि जो आवश्यक है वो तो हुए ही ना, तो जो जो जिस जिस समय में जो होने योग्य था वो हुआ, मतलब इसका ये छल ग्रहण नहीं करना चाहिए कि कोई मुनि अवस्था के लंबे काल में रहे और बिना 28 मूल गुण के उसका रत्नत्रय सुरक्षित रहे। जैसे पैकिंग ना होवे तो माल सुरक्षित नहीं रहता, ख्याल में आया ना? ऐसे व्यवहार चरित्र की पैकिंग में ही माल सुरक्षित रहता है। अभी भाई साहब ने नियम सार में चलाया है व्यवहार चरित्र अधिकार। तो ये क्रिया देखो, प्रधानता शब्द का प्रयोग किया गया है जो ये बताता है कि गौण रूप से दूसरा कारण भी विद्यमान है। क्रिया ने में अनुष्ठान की प्रधानता है, यानी शुभ भाव की प्रधानता है, और उसमें से भी यही अर्थ निकलता है कि गौण रूप से उसी समय सम्यक ज्ञान रूप विवेक भी विद्यमान, सम्यक ज्ञान। अब धर्म धर्म कैसे लागू होगा? ये तो नए पे आ गए अपन। वो तो क्रिया से सिद्धि होवे ऐसी योग्यता, इसका अर्थ ये है, सुनना ध्यान से, ज्ञानी के जो स्वभाव होते हैं उसमें ऐसी योग्यता होती है कि उस पर मोक्ष मार्ग का उपचार किया जा सकता है। वो योग्यता वो स्वभाव का धर्म है, और वो आत्मा में है, वो योग्यता जो स्वभाव में प्रकट हुई हो, काहे कि मोक्ष मार्ग होने की नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का कारण कहा जावे ऐसी योग्यता वाला शुभ परिणाम उसको होता है। तो ये प्रधानता और गुणता की बात समझना। अब अपन व्यवहार में वो निश्चय की चर्चा करें जो प्रचलित है, जो अपन जिसे अपन तो द्रव्य वो निश्चय और पर्याय वो व्यवहार प्राय इस पर ही खेलते रहते हैं, लेकिन इसमें टोडरमल जी का सपोर्ट बहुत लेना चाहिए। और अमृतचंद्र आचार्य गाथा 46 स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। स्वाश्रित और पराश्रित का क्या मतलब है? किसी वस्तु का उसके स्वरूप से वर्णन करना, ये स्वाश्रित है, और संयोग से, विकार से, भेद से वर्णन करना ये पराश्रित है। और आप देखो स्वाश्रित पराश्रित की कथा यहां मैंने देवलाली में कई दफे कही है कि धर्मास्ती अधर्मास्ती आकाश और काल चार द्रव्य पूर्णतया स्वतंत्र हैं, शुद्ध हैं, द्रव्य से भी पर्याय से भी निरपेक्ष हैं, किसी को छूते नहीं है, यानी इन जैसा पवित्र और कोई नहीं है इस विश्व में, मिलते नहीं, भले वो असंख्यात प्रदेश में धर्मास्ती भी है और उसी में अधर्मास्ती भी है, वही कारण है, यानी एक दूसरे को टच नहीं करते, व्याप्त व्यापक संबंध नहीं है, संयोग संबंध नहीं, संयोग भी नहीं, उनको संयोग नहीं कह सकते धर्मास्ती और अधर्मास्ती, लेकिन उनकी परिभाषा स्वाश्रित द्रव्यों की परमाशा पराश्रित ही मिलती है। आप बिना जीव और पुद्गल का सपोर्ट लिए धर्मास्तिकाय को नहीं समझा सकते न समझ सकते। संपूर्ण जिनागम में यही परिभाषा है, पराश्रित रूपण समझ गए ना। लेकिन जीव द्रव्य का और पुद्गल का दोनों की पर्याय में पराश्रितता है। देखो जो आया था ना ईश्वर नय, पराश्रितता मतलब पर संयोग में आवे, ऐसी योग्यता पुद्गल में भी जीव के संयोग में आता है, लेकिन उसमें ईश्वर नय नहीं लागू पड़ता। सुनना ध्यान से, क्यों? क्योंकि वो पराधीनता में कोई दुख नहीं भोगता। यहां तो प्रयोजन दुख मिटाने का है, तो आत्मा ने अपनी भूल से अपनी स्वाधीनता को भूल कर पर को ईश्वर माना तो पराधीनता को भोगा, तो वो भोगने की योग्यता आत्मा में है तो ईश्वर धर्म है। मुझे दूसरी बात कहना है कि जीव यद्यपि पराधीन है लेकिन उसके लक्षण उसकी परिभाषाएं स्वाधीन उपयोग लक्षणों में, जीव से ही जीव उसके ही सद्भूत लक्षणों से आत्मभूत लक्षणों से ही उसकी पहचान की अपन ने। उसमें पुद्गल का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है जीव को समझने के लिए। संसारी जीव की बात अलग है, जीव मात्र की बात है। ऐसे पुद्गल की परिभाषा, अगर पुद्गल स्कंदों में भी जाता है, परमाणु छूटा भी रहता है, जीव के संयोग में भी आता है, सब होता है, लेकिन उसकी परिभाषा स्वाधीन है। स्पर्श रस गंध वर्ण मंता पुद्गला, ये स्वाश्रित, समझ में आया ना। तो यहाँ निरूपण में स्वाश्रय है या पराश्रय, ये ध्यान रखने की बात। देखो बहुत आनंद आएगा इसका वर्णन सुन के आपको। आत्मद्रव्य व्यवहार ने से अन्य परमाणु के साथ बंधने वाले और उससे छूटने वाले परमाणु के समान, एक परमाणु बंधा माने काय से बंधा दूसरे परमाणु से, छूटा माने काय से छूटा और दूसरे परमाणु से, इसका अंत में से छूट के अलग हो गया। तो ये परमाणु का बंधना और छूटना व्यवहार नय का कथन है, क्योंकि दूसरा खड़ा हो गया। ऐसे आत्मा बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है। तो द्वैत का मतलब समझना, इसमें गुरुदेव ने वो बात खोली है वो मैं पहले बता देना चाहता हूं। सबसे नीचे 58 पेज पे यहां जो ये कहा जा रहा है कि निश्चय ने से आत्मा बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है, उसमें आत्मा का त्रिकाली स्वभाव जो कि दृष्टि का विषय है वो नहीं है ना। यहाँ तो बंध और मोक्ष पर्याय में अकेला आत्मा परिणमता है, तो आत्मा आत्मा से ही बंधा है और आत्मा आत्मा से ही छूटता है, क्योंकि जिन भावों से छूटा राग द्वेष सुख दुख वो आत्मा के ही भाव थे, तो मोक्ष भी आत्मा में आत्मा से ही हुआ और बंध भी आत्मा में आत्मा से ही हुआ। तो कर्मों की बात खड़ी मत करी, नहीं करी, तो ये अद्वैत हो गया, ये निश्चय नहीं हो गया, ख्याल में आया ना। ये निश्चय नहीं, निश्चय नहीं क्यों? स्वाश्रित निरूपण, यानी बंध का भी स्वाश्रित निरूपण करें। वैसे बंध का स्वाश्रित तो बंध के आश्रित होगा, लेकिन यहाँ जीव के साथ में ले रहे, यहाँ जीव के साथ में ले रहे है। बात समझने की कोशिश करना, हम बंधे हैं काय से बंधे हैं, अरे साहब ये बाल बच्चे हैं, मकान है, स्त्री है, पुत्र है, ये सब उच्चरित कथन है। पर से कोई जीव बंधता नहीं, कर्मों से बंधा है आत्मा, ये भी असद्भूत व्यवहार ने का कथन है। राग द्वेष से ही बंधा है, ये निश्चय में गया क्योंकि स्वाश्रित हुआ, राग द्वेष से ही बंधा और मोक्ष हुआ तो काय से हुआ, राग द्वेष नष्ट हो गए तो मोक्ष हो गया। फिर भी कर्मों से बंधा है ऐसा कहना और कर्मों से छूटा है ऐसा कहना, ये द्वैत, द्वैत माने दो चीजें, बंध में भी दो जीव और कर्म, मोक्ष में भी दो जीव और कर्म, कर्म से छूटा, तो इस तरह द्वैत का अनुसरण करने में व्यवहार ने और अद्वैत का अनुसरण करने में निश्चय ने। तो फिर से 57 पेज पे पहला पॉइंट, भगवान आत्मा में एक ऐसी योग्यता है जिससे उसकी बंध या मोक्ष पर्यायों को कर्म की सापेक्षता से देखा जा सके। और ये तो अध्यात्म के प्रकरण में अपन उनको कर्म से निरपेक्ष देखते हैं, बंद को जीव बंधे एक राग अशुद्ध उपयोग से, वो है ना भाई कर्म जाल वर्गणासो बंधे ना जीव ना बना सीधा जी का छंद है, तो उसमें पूरे पराश्रय का निषेध किया, राग द्वेष से जीव बंधता है। तो ये योग्यता का नाम कौन सा है? अद्वैत धर्म, उसको जानने वाला निश्चय न। इस योग्यता को व्यवहार धर्म कहते हैं, कर्म की सापेक्षता वाले को। और इसके विरुद्ध एक ऐसी योग्यता भी है जिससे उसकी बंध मोक्ष पर्यायों को कर्म से निरपेक्ष देखा जा सके। गजब है, बंध को भी कर्म से निरपेक्ष देखना। आज बात आदित्य ने भूतार्थ नौ तत्वों में भूतार्थ ने से उनको जानना, इसका एक बहुत सुंदर एक प्रकरण हमने सुना था एक बार। नौ तत्वों में भूतार्थ से आत्मा कैसे दिखाई देता है? देखो जीव में तो जीव है, अजीव में भी कौन बैठा है? जीव, अजीव। तो अजीव को भूतार्थ ने से देखो तो जीव दिखना चाहिए, तो अजीव को भूतार्थ से जाना कहा गया। नास्तित्व ने से जीव बैठा है उसमें, ऐसा पूरा। अभी आश्रम, आश्रम भी आत्मा को प्रकाशित करता है अगर भूतार्थ ने से देखो। कैसे? आत्मा को भूलने का नाम ही तो आश्रम है। अगर आत्मा ही नहीं होता तो आश्रम कहां से आ जाता? ऐसे आत्मा को भूल के पर को अपना मानने का नाम ही तो बंद है। तो ये आश्रम बंद भी आत्मा की भूल से उत्पन्न हुए है, इस तरह आत्मा की सिद्धि करते। और नियम साल की दसवीं गाथा के प्रवचन में तो गुरुदेव ने राग का कर्ता आत्मा स्वयं है ऐसा न माने उसको दृष्टि का विषय हाथ में नहीं आएगा। नियम साल गाथा दस के प्रवचन गुरुदेव के, ये विषय मेरा नहीं है यद्यपि मेरा नहीं मतलब इस प्रकरण में, लेकिन उनकी दृष्टि देखो जो अद्वैत ने का वर्णन किया, आत्मा स्वयं अपने रागादि भावों से बंधा है, इसमें पर का कुछ काम नहीं। बंधने के लिए पर नहीं चाहिए, क्या बोला? बंधने के लिए कोई दूसरा द्रव्य नहीं चाहिए, अपने को भूल जाओ यही बंध है। और मोक्ष के लिए भी कोई बेड़ियां छूटे तो वो कर्मों की तो मोक्ष होएगा। अरे बेड़ियां तो छूटती रहती बनती रहती, छूटती रहती बनती रहती, वो प्रक्रिया तो चालू ही रहती है। अपने को याद कर लो, अपने को जान लो, अपने में समझ लो, तो राग द्वेष मिट गए, दुख मिट गया, यानी मोक्ष हो गया। तो ये बंध और मोक्ष पर्यायों को कर्म से निरपेक्ष देखा जा सके, इस योग्यता का नाम निश्चय धर्म है या अद्वैत धर्म है, जिसे निश्चय ने का विषय कहा गया है।
बात प्रवचन सार 177 गाथा में आचार्य देव ने तीन बंध लिए, पुद्गल जीवन
पुद्गल बंध जीवन बस कोई सापेक्षता और निरपेक्षता से देखा। अब देखना तीसरा पॉइंट देखना जरा, जो स्वाश्रित पराश्रित की बात मैंने यहाँ दूसरे पॉइंट में लिखी है, तीसरा पॉइंट, यद्यपि अभेद आत्मा में बंध मोक्ष का भेद करना भी द्वैत है। क्या को द्वैत? दूसरा, आत्मा एक अखंड है तो जीव कितने प्रकार के, संसारी और सिद्ध, द्वैत खड़ा हो गया। अपन संसार अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में जाएंगे तो दो भेद हो गए ना, ख्याल में आया? तो ये दो भेद वाले द्वैत की बात यहाँ नहीं है, ये कहना है मोतीचंद भाई का है। यहाँ तो कर्मों से बंधने या छूटने को द्वैत कहा गया है, और भगवान आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से बंधता या मुक्त होता है, परमाणु की स्निग्ध और रुक्षता के समान आत्मा में भी बंधने या छूटने की योग्यता है। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधा है, ये तो पर सापेक्ष कथन है, लेकिन उसमें जो स्निग्ध और रुक्षता का परिणमन हो रहा है, कदाचित वो न दूसरे से बंधे तो भी अगर स्निग्धता रुक्षता है तो परमाणु में भाव बंध बैठा हुआ है, परमाणु का भाव बंध। तो उसे बंध या मुक्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं है। अब यहाँ अपेक्षा माने तो कर्म की जरूरत है उसकी बात नहीं है, या तो बंध और मुक्ति के निरूपण की बात है। इस प्रकार बंध और मोक्ष को स्वाधीन देखना निश्चय नहीं है। प्रवचन सार गाथा 16 में आत्मा को संसार या मुक्त अवस्था में स्वयं भूखा है। बाकी सब समझ लेना आप, अपने पास 7 मिनट है। अंतिम जोड़ा अशुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं, ये अंतिम है। पहला द्रव्य नहीं और पर्याय नहीं, और अंतिम अशुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं। देखना क्या एंगल है इसमें। आत्म द्रव्य अशुद्ध नहीं से घट और राम पात्र से विशिष्ट मिट्टी पात्र के मात्र के समान सोपाधि स्वभाव वाला है, और शुद्ध नहीं से केवल मिट्टी मात्र के समान निरुपाधि स्वभाव वाला है। यानी आत्मा को उसकी औपाधिक पर्यायों से साथ में देखना ये अशुद्ध नहीं हुआ। देखो अशुद्ध को अशुद्ध कहना वो तो निश्चय है, मैल को मैल कहना वो तो निश्चय यथार्थ है, लेकिन जो वस्तु पे मैल लगा है उस वस्तु को मैली कहना ये अशुद्ध नहीं, ये व्यवहार नहीं। कई दफे मैंने गुरुदेव श्री के मुख से सुना, और यहाँ चेतन भाई ने भी ये बात कही थी ज्ञानी गाथा के भावार्थ में, व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ। क्या वैसे आत्मा और शरीर का संयोग है कि नहीं, तो संयोग को संयोग की दृष्टि से देखो तो ये झूठ है। क्या संयोग नहीं है? क्या हम घर में बैठे रहे, आत्मा घर में आराम करता रहे, शरीर यहाँ आके प्रवचन कर ले रहे हैं? ऐसी व्यवस्था होती तो कितना बढ़िया होता। हाँ, लेकिन अभी अभी ये बता रहे थे हमारे अमृत भाई, 6 अभय कुमार दिख रहे हैं यहाँ 3 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, ऐसे। कहने का आशय यह है कि शरीर और आत्मा के जो संयोग रूप अवस्था है वो जब तक है तब तक रहेगी। तो व्यवहार को व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो वो यथार्थ है, ख्याल में आए। फिर वो व्यवहार कब बनता है? निश्चय के साथ में उसको खड़ा किया जाए और उस दृष्टि से निश्चय का वर्णन किया जाए, आत्मा का वर्णन शरीर की सापेक्षता से किया जाए। क्या आत्मा गोरा है, काला है, ये व्यवहार हो गया, तो यह अभूतार्थ हो गया, ये असत्यार्थ हो गया। तो यहां उपाधिक भावों की चर्चा है। भगवान आत्मा में औपाधिक भाव रूप परिणमित होने की योग्यता है, ये कितनी जगह आई है, 4-5 नयों के जोड़े में ये पराधीन होने की योग्यता, विकारी रूप होने की योग्यता, जिसे अशुद्ध धर्म के धर्म गजब है, अशुद्ध धर्म, और वो भी आत्मा में बैठा हुआ है। शुद्धता अशुद्धता वस्तु के धर्म, बस जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे वाला मामला है, पर्यायगत जो उसकी विशेषताएं हैं, अगर वो योग्यता उसमें नहीं होती तो वो पर्याय उस रूप परिणमित कैसे होती। बिना योग्यता के परिणमन की आप अपने ज्ञान में कल्पना खड़ी करके देखें, कोई भी काम बिना योग्यता के उस धर्म की, हमारी आपकी योग्यता नहीं, हमारे क्या बोलते हैं योग और उपयोग के प्रयत्नों की बात नहीं, वो तो निमित्त में गया, लेकिन उस पर्याय रूप परिणमन होने की योग्यता के बिना वो पर्याय हो जाए ये कैसे हो सकता है। और विकारी भाव रूप परिणमन होने पर भी सदा एक रूप रहने की योग्यता है, एक रूप मतलब वो ज्ञान स्वरूप ज्ञायक रूप जिसे शुद्ध धर्म कहते हैं। इन दोनों धर्मों को जानने वाले ज्ञान अशुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं है। अशुद्ध धर्म पर्यायगत योग्य, पर्यायगत माने पर्यायों से संबंध रखने वाली, कोई प्रत्येक पर्याय में वो अशुद्धता वाली योग्यता हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है, जिस पर्याय में है उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं, देखो ज्ञान जैसे उपयोग सामान्य और उपयोग विशेष की बात करते हैं ना अपन, तो चेतना का सामान्य प्रवाह उस दृष्टि से आत्मा को देखो तो आत्मा को वो रागादी भाव छूते नहीं है, वो सदा ही शुद्ध रहता है। अभी तो ऊपर ऊपर तैरते हैं, समझ में आया। और कई जगह ये निर्मल पर्यायों को भी औपाधिक कहा गया है, यद्यपि यहाँ उसकी चर्चा नहीं ली, उन्हें गौण रूप से ले सकते हैं। औपाधिक माने छायिक भाव, क्यों नाम रखा छायिक उसका, तो नैमित्तिक भाव, यद्यपि है स्वभाव रूप परिणमन, वस्तु का स्वभावानुकूल परिणमन है, जैसी शक्ति है वैसी व्यक्त हुई है, लेकिन कर्म का छह निमित्त है, इतनी उसमें वो क्या बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में लगान लग गई, इतनी उपाधि लग गई। नहीं तो चार भावों को परद्रव्य प्रभाव हे कैसे कहते हैं? नियम सार में ये चार भावों को परद्रव्य प्रभाव हे कहा है, आत्मा से भिन्न कहा है, तो इन्हें भी उपाधि कहा है। तो यही तो कारण है कि निमित्त निमित्त संबंध वाली व्यवस्था के अंतर्गत है। अशुद्ध धर्म पर्यायगत योग्यता है, जैसे क्षणिक उपादान की योग्यता कहा जा सकता है। यह योग्यता ही आत्मा के विकारी पर्णमन को सुनना द्रव्य कर्म आदि पर पदार्थों से निरपेक्ष और स्वतंत्र सिद्ध करती। ठीक है, कर्म के उदय के बिना विकार नहीं होता, एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। लेकिन उदय होता किस में? उदय उदय में ही होता है, वो परिणाम कर्म में ही होता है। समझ में आया? वो जीव को वो परिणाम छूता भी नहीं, गजब बात है। और दूसरी तरफ के तो राग आदि भावों में पुतगल व्याप्त रहता है आदि मध्य अंत में, ऐसी कितनी व्यवस्थाएं है। लेकिन वो परिणाम कर्म से निरपेक्ष है, बहुत गलिक है, सुनना ध्यान से। ये उस परिणाम का स्वरूप है, वो पुद्गल से हुआ है कि पुद्गल ने पैदा किया है, ऐसा नहीं है। भौतगलिक पना उस परिणाम का स्वरूप है, यानी वो चेतना से भिन्न है, उसमें चेतना का सद्भाव नहीं है और पुद्गल कर्म का उदय का निमित्त है। ये दो कारणों से उसे भौतगलिक या चिदाभास ऐसा बोला जाता है। यदि पर्याय में विकारी भाव रूप परिणमने की योग्यता न होती तो अनंत पर पदार्थ भी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं करा सकते। ये मैं हर सेंटेंस में वो रेफरेंस नहीं देता कि इस किताब में ये लिखा है, जहाँ जरूरी होता है वहीं दिए हैं मैंने, लेकिन ये है नए प्रज्ञापन का बात कि अनंत पर पदार्थ। हम फिर बड़े वजह की बात है कि जिस कर्म के उदय से विकार होता है तो वो विकार में निमित्त बन जाता है, खुद उसमें विकार नहीं होता। ये निमित्त का क्या स्वरूप? धर्मास्ति का गति में निमित्त तो होता है, खुद गति नहीं करता, कैसी भी चित्र बात। तो कर्म में राग द्वेष नहीं होता, कर्म में जो राग द्वेष होते हैं वो अलग चीज है। वो विभाग उसका वो जुदी चीज है, जीव के राग द्वेष जुदी चीज है। लेकिन वो जो राग द्वेष जिससे दुख उत्पन्न हो गए वो कर्म में नहीं होता, ऐसी निमित्त निमित्त व्यवस्था है। रागादि भाव आत्मा का त्रिकाली स्वभाव न होने पर भी वे पर के कारण उत्पन्न नहीं होते, आत्मा में उन्हें धारण करने की योग्यता है, अर्थात अशुद्ध ने से आत्मा का ऐसा ही स्वभाव। इसमें एक विचित्र बात यह है कि उदाहरण में घट और राम पात्र से विशिष्ट मिट्टी ये लिया है। अब वो घट मिट्टी का राग जैसा विकार तो है नहीं, वो तो मिट्टी का ही आकार है। लेकिन घट रूप परिणमन एक विशिष्ट आकार होने से उसे उपाधि कहा। ख्याल में है ना उदाहरण में सिद्धांत में क्या फर्क है? वैसे अपन सिद्धांत में लगा तो ज्ञान में बनने वाले गेयाकार वो उपाधि है, लेकिन वास्तव में तो वो ज्ञान का ही परिणमन है। ऐसे घट भी मिट्टी का ही परिणमन है, क्या फर्क है उसमें? लेकिन सिद्धांत में भाई साहब रागादि लिए और उदाहरण में पर्याय ली, घट पर्याय मिट्टी पर्याय। अकेली मिट्टी को देखो तो वो शुद्ध है और मिट्टी घड़ा है ऐसा देखो तो वो अशुद्ध है, तो घड़ा अशुद्धता है। लेकिन मिट्टी की एक रूपता के सामने घड़े का एक विशिष्ट जुदा आकार है, ये अनेक आकार, ये अशुद्धता है। ख्याल में आए? ऐसे बहुत इसमें 5-7 पॉइंट और हैं, तो वो सब इसी भाव को बताने वाले हैं। अंत में ये लिखा है, इस प्रकार यहाँ अनंत धर्मात्मक आत्मा में विद्यमान 47 धर्मों का कथन किया। 47 ही विद्यमान है ऐसा नहीं है, अनंत धर्मों में से 47 अनंत धर्मात्मक आत्मा उसके 47 धर्मों का कथन किया। शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा को दृष्टि में लेना ही इन सभी धर्मों को जानने का फल है। तो ये गुरु चिंतन शिविर में से ये 47 नियमों का वर्णन यहाँ पूरा हुआ। अभी और भी विषय आगे चल रहा है, उसका दावा आप लेंगे। यही विराम
क्या? हाँ।